पृष्ठ संख्या 191, अध्याय 11, नई चेतना और नया गद्य साहित्य। वर्तमान युग को गद्य का युग कहा जा सकता है, क्योंकि गद्य के द्वारा ही जीवन की शक्ति और संघर्ष का तर्कपूर्ण उल्लेख अधिक संभव हो पाता है। गद्य की आधारभूमि मनोभावों को अस्वीकृत नहीं करती, वरन विचारों के परस्पर टकराव में इसकी सृजन शक्ति को बल मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि गद्य के माध्यम से जीवनोद्देश्य का वर्णन स्पष्ट शब्दों में किया जा सकता है। यही कारण है कि अन्य भारतीय भाषाओं की तरह उर्दू गद्य ने भी उसी समय उन्नति की जब भारतवर्ष का जीवन नए साँचे में ढल रहा था। पिछले अध्याय में वह पृष्ठभूमि दी गई है जिससे जीवन का यह परिवर्तन आँखों के सामने आ जाता है। उसका दोहराना आवश्यक नहीं है, परंतु इस अध्याय को पढ़ते समय उन समस्याओं को आंख से ओझल ना होने देना चाहिए जो भारत के विभिन्न वर्गों को विभिन्न परिस्थितियों का साक्षात्कार कराती हैं और विचारधाराओं को नए मार्गों पर ला डालती हैं। संभवतः गदर के समय तक के गद्य लेखकों और उनकी रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख 8वें अध्याय में किया जा चुका है। अब जिन लेखकों का परिचय दिया जा रहा है उनके लिए यह कहा गया है कि वह अपने संग उर्दू साहित्य का स्वर्ण युग लाए और उर्दू साहित्य को, जो उच्च वैज्ञानिक और गंभीर गद्य से खाली था, अपनी शक्तिशाली रचनाओं से ओतप्रोत कर दिया। इस युग को साधारणतः सर सैयद का युग कहा जाता है, क्योंकि इस युग के कई बड़े लेखक जो उनके संपर्क में थे विशेष रूप से प्रभावित हुए, और जो उनसे दूर थे उन्होंने भी उस आंदोलन का अनुमोदन या विरोध करके सर सैयद के प्रभाव को अवचेतन रूप में स्वीकार किया। सैयद अहमद खां 1827 ईस्वी से 1898 ईस्वी ने दिल्ली में जन्म लिया। उनके पितामह दिल्ली दरबार में विशिष्ट पदों के अधिकारी रहे थे। उनके ननिहाल में भी अनेक प्रसिद्ध विद्वान तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए थे। सैयद अहमद खां के नाना गणित और ज्योतिष के बहुत बड़े विशेषज्ञ समझे जाते थे। ददिहाल और ननिहाल दोनों परिवारों के अनेक सदस्य मुगल दरबार और ईस्ट इंडिया कंपनी में आदर की दृष्टि से देखे जाते थे। सर सैयद की माता बड़ी गुणवती और स्वतंत्र विचारों की महिला थीं। उनकी शिक्षा उन्हीं की देखरेख में हुई। उन्होंने दिल्ली के बड़े बड़े विद्वानों से ज्ञान के सभी क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा प्राप्त की। वहाँ के कवियों के साथ उठे बैठे और धार्मिक नेताओं की गोष्ठियों में भी सम्मिलित हुए। युवावस्था में रंगीन स्वभाव रखते थे, पर कुछ समय बाद बहुत गंभीर, विचारशील और धार्मिक जीवन बिताने लगे। पृष्ठ संख्या 192। सर सैयद ने 1838 ईस्वी में लगभग अंग्रेज कंपनी में नौकरी शुरू की और 1841 ईस्वी में मुंसिफ हो गए। 1842 ईस्वी में दिल्ली के अंतिम बादशाह जफर ने उनको कई उपाधियां प्रदान की। 1855 में सदर अमीन होकर बिजनौर गए। यहीं से उनकी सुख्याति का सूर्य उदय होता है। इससे पहले भी वह लगभग 11 पुस्तकें लिख चुके थे, परंतु उन्हें साहित्यकार के रूप में बहुत कम लोग जानते थे। वह बिजनौर ही में थे कि गदर हो गया। सर सैयद ने उसमें बड़ा काम किया। अंग्रेज कर्मचारियों को बचाने के अतिरिक्त उन्होंने विपत्ति में फंसे हुए लोगों की सहायता का सफल प्रबंध किया। विद्रोही सिपाही उनको मार डालना चाहते थे, परंतु वह किसी प्रकार बच निकले। दिल्ली पहुंचे तो घर मिट चुका था, लेकिन उन्होंने हिम्मत ना हारी और अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों के बीच समझौता कराने की चेष्टा करते रहे। सर सैयद 1858 ईस्वी में सदरुम सुदूर होकर मुरादाबाद पहुँचे। वहाँ उन्होंने कई पुस्तकें लिखीं। 1800 गाजीपुर गए। वहाँ उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी स्थापित की। 1866 ईस्वी में अलीगढ़ आए और सोसाइटी को अपने साथ लाए, जिसमें बहुत सी अंग्रेजी पुस्तकों का अनुवाद हुआ। 1866 ईस्वी में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के नाम से एक संस्था बनाई, जिसका उद्देश्य था कि अंग्रेजों से मैत्री स्थापित की जाए और इसी के आधार पर उनसे अधिकार प्राप्त किए जाएं। 1867 ईस्वी में उन्होंने उर्दू विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव सरकार के सामने रखा, परंतु उसमें सफलता ना हुई। 1867 ईस्वी में उन्होंने होम्योपैथिक चिकित्सा को प्रचलित करने का आंदोलन भी आरंभ किया। उसी समय बनारस में हिंदू उर्दू का झगड़ा शुरू हो गया, जो दुर्भाग्य से अब तक चला जा रहा है। सर सैयद ने उर्दू के पक्ष में बहुत कुछ लिखा। 1869 ईस्वी में वह अपने पुत्र को लेकर लंदन गए। वहाँ उन्होंने यूरोप में शिक्षा प्रणाली का गहरा अध्ययन किया और उसी ढंग का एक कॉलेज खोलने का विचार लेकर लौटे। 1870 ईस्वी में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पत्रिका तहजीबुल इखलाक का प्रकाशन आरंभ किया, जो नए उर्दू गद्य का पहला नमूना कही जा सकती है। 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एक विश्वविद्यालय खोला और 1878 ईस्वी में कॉलेज की कक्षाएं भी खुल गईं और 1883 ईस्वी में इस कॉलेज में सभी प्रकार की उच्च शिक्षा दी जाने लगी। इसी युग में वह वायसराय और काउंसिल के सदस्य भी बनाए गए। 1886 ईस्वी में उन्होंने मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस नामक संस्था की स्थापना की। सर सैयद मुसलमानों के कांग्रेस में सम्मिलित होने के विरोधी थे और उन व्यक्तियों और संस्थाओं का अनुमोदन करते थे जो राजभक्त थीं। उनका विचार था कि मुसलमान गदर में बर्बाद हो चुके हैं, अगर फिर उन पर विपदा पड़ी तो कहीं के न रहेंगे। सर सैयद की विचारधारा का अध्ययन करते हुए यह भी याद रखना चाहिए कि वह आरंभ में हिंदू मुसलमानों को एक ही राष्ट्र का समझते थे और कहते थे कि हिंदुस्तान के सभी रहने वालों को केवल हिंदू कहना चाहिए। उनका यह भी विचार था कि हिंदुस्तानियों को ऊंचे से ऊंचा पद मिलना चाहिए और उनमें तथा अंग्रेजों में हर प्रकार की समानता होनी चाहिए। बाद में यह विचार बदल गए। पृष्ठ संख्या 193। एक बहुत ही सफल और परिश्रमी जीवन बिताने के बाद 1898 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। सर सैयद इस युग के महान व्यक्तियों में थे, जिन्होंने भारतीय जीवन और विशेषकर मुसलमानों के जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित किया। यहाँ उनके प्रभाव का पूर्ण विश्लेषण नहीं किया जा सकता, परंतु इतना जानना आवश्यक है कि वह अंग्रेजों से मैत्री स्थापित करके देश की उन्नति चाहते थे। वह एक क्षण के लिए भी यह नहीं सोच सकते थे कि अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी सभ्यता के सहयोग के बिना भारत उन्नति कर सकता है। उनके विचारों से उस नवजागरण को शक्ति मिली, परंतु कई क्षेत्रों में हानि भी पहुंची, क्योंकि उन्होंने जनजीवन की विषमताओं को समझने पर बल नहीं दिया जो देश के जीवन में प्रवेश कर रही थी। उन्होंने जो कुछ किया वह सुधार की दृष्टि से किया। वह एक निर्भय, चेतनापूर्ण और क्रियाशील समाज प्रेमी व्यक्ति थे। वह विद्या के साथ साथ कर्म की भी असाधारण शक्ति रखते थे। उनके कार्य क्षेत्र को देखकर यह कहना पड़ता है कि वह अकेले कई व्यक्तियों के बराबर परिश्रम कर सकते थे। जब तक वह जीवित रहे, किसी प्रकार का विरोध उन्हें दबा ना सका, और जब वह मर गए तो उनके गुणों और अवगुणों के बहुत से अपनाने वाले पैदा हो गए। सर सैयद ने छोटी बड़ी 30 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। भाषणों, पत्रों और निबंधों के संग्रह इसके अतिरिक्त हैं। आरंभ में उन्होंने अधिकतर धार्मिक विषयों पर रचनाएं की या फारसी ऐतिहासिक पुस्तकों का संपादन किया। उनकी पहली महत्वपूर्ण पुस्तक आसारुस सनादीद है, जिसमें उन्होंने दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों, बाजारों और प्रसिद्ध लोगों के संबंध में बहुत सी गवेषणात्मक बातें लिखी हैं। इसमें उन्होंने बड़े परिश्रम से बहुत सी ऐतिहासिक बातें एकत्र कर दी हैं, जो इनमें पहले कभी लिखित रूप में प्रस्तुत नहीं की गई थी। इसके अनुवाद यूरोप की भाषाओं में भी हो चुके हैं। जिला बिजनौर का इतिहास, बिजनौर में गदर का आँखों देखा हाल, गदर के कारणों का विश्लेषण, लायल, मोहम्मडन ऑफ इंडिया, यह सब पुस्तकें लगभग 5 वर्ष की अवधि में लिखी गईं। इसके बाद उन्होंने बाइबिल की व्याख्या और कुछ समय के बाद कुरान शरीफ की टीका भी लिखी। उस समय उन्होंने जो निबंध लिखे उनका भी उद्देश्य यही था कि मुसलमानों और ईसाइयों में एक दूसरे के संबंध बढ़ाने की इच्छा पैदा हो। वास्तव में उनके विचार से यह उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता थी कि वह मुसलमानों के मस्तक से वह कलंक मिटाना चाहते थे जो गदर में लग गया था। उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक खुतबाते अहम दिया कही जा सकती है, जिसमें उन्होंने मुसलमानों के रसूल पर लगाए गए उन आरोपों का तर्कपूर्ण उत्तर दिया है जो ईसाई लेखक उन पर लगाया करते थे। इस पुस्तक के लिए सर सैयद ने बड़ा परिश्रम किया और बड़ा कष्ट उठाया। उन्होंने इसका अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित कराया। पृष्ठ संख्या 194। इसी प्रकार कई और पुस्तकें लिखी जिनमें इस्लाम धर्म की विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। सर सैयद को एक प्रकार से उर्दू निबंध का जन्मदाता कहा जा सकता है, यद्यपि इससे पहले मास्टर रामचंद्र और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ऐसी रचनाएं कर चुके थे, लेकिन सर सैयद ने तहजीबुल इखलाक निकालकर इस साहित्य रूप को बड़ा सहारा दिया। उनके लेखों के महत्व को देखते हुए कुछ आलोचक उन्हें प्रथम निबंधकार मानते हैं। सर सैयद अंग्रेजी बहुत कम जानते थे, परंतु उन्होंने अच्छे अच्छे अंग्रेजी निबंधों से जानकारी प्राप्त कर ली थी और अपनी पत्रिका को उसी ढंग पर चलाना चाहते थे। इन लेखों में उस समय की सभी समस्याओं पर विचार प्रकट किए गए हैं। कहीं वाद विवाद हैं, कहीं व्यंग्य, कहीं आध्यात्मिक प्रश्नों को नए वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर समझाने का प्रयत्न किया गया है। इनको पढ़कर सर सैयद के महत्व का अनुमान लगाया जा सकता है। जब सर सैयद ने 1837 ईस्वी में लगभग लिखना आरंभ किया, उस समय उर्दू गद्य में पुरानी शैली प्रचलित थी। उन्होंने अपनी पहली बड़ी पुस्तक आसारुस सनादीद उसी ढंग पर लिखी, परंतु दूसरे संस्करण के समय उसे नई साहित्यिक शैली में परिवर्तित कर लिया। साधारणतः सर सैयद को अपने विचारों के प्रचार से काम होता था और वह साहित्यिक सौंदर्य पैदा करने का प्रयास नहीं करते थे, पर अपने विचारों के लिए उनके हृदय में जो भावना पैदा होती थी उसे बड़े उत्साह से प्रकट कर सकते थे। इसीलिए उनका गद्य गंभीर होने के साथ साथ प्रभावपूर्ण भी है। सर सैयद के संबंध में कहा जा सकता है कि चाहे उनके विचार वाद विवाद का विषय हो, परंतु उनकी साहित्यिक रचनाओं से उर्दू साहित्य अवश्य माला माल हो गया। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद एक बहुत बड़े विद्वान और धार्मिक नेता मोहम्मद वाकर के सुपुत्र थे। उन्होंने 1833 ईस्वी में दिल्ली में जन्म लिया। उनके जन्म के केवल 3 वर्ष बाद उनके पिता ने उर्दू का सबसे पहला अखबार दिल्ली से निकाला। आज़ाद ने फारसी अरबी की उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त की थी और कविता में शौक के शिष्य हो गए। उन्होंने दिल्ली कॉलेज में भी शिक्षा पाई। गदर में आज़ाद के पिता अंग्रेज़ों के हाथ से मारे गए। उनका घर बार लूटा और आज़ाद केवल अपने उस्ताद जौक के काव्य संग्रह की हस्तलिखित पांडुलिपि लेकर दिल्ली से निकल पड़े और जीविका की खोज में लखनऊ और हैदराबाद गए। 1864 ईस्वी में लाहौर पहुंचकर शिक्षा विभाग में 15 रुपये महीने पर नौकर हो गए। वहाँ उन्होंने फारसी और उर्दू में पाठ्य पुस्तकें लिखकर बड़ा नाम पैदा किया। शिक्षा विभाग के अंग्रेजी और हिंदुस्तानी अफसर उनके ज्ञानात्मक लेखों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने काबुल और ईरान की यात्रा भी की और वर्तमान फारसी भाषा का अध्ययन भी किया। जैसा कि कहा जा चुका है, आज़ाद ने कुछ अंग्रेज विद्वानों के सहयोग से लाहौर में अंजुमन पंजाब की स्थापना की। पृष्ठ संख्या 195, और उसी में उर्दू के नए काव्य ने जन्म लिया। वह कई पत्रिकाओं के संपादक भी रहे और धीरे धीरे उर्दू साहित्य के रत्नों में गिने जाने लगे। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अरबी फारसी के प्रोफेसर नियुक्त किए गए, परंतु इस पद पर बहुत दिनों तक ना रह सके। 1887 ईस्वी में उनको शम्सुल उलमा की उपाधि मिली और 1888 ईस्वी में मानसिक रोग का आरंभ हुआ जो मरते समय तक बाकी रहा। उन्माद की स्थिति में भी उन्होंने कई पुस्तकें लिखीं जिनमें अधिकतर दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों पर बल दिया गया है, परंतु उनका बड़ा भाग समझ में नहीं आता। आज़ाद का देहांत लाहौर ही में 1910 ईस्वी में हुआ। आज़ाद की रचनाओं की संख्या तो बहुत है, परंतु उनमें आवे हयात, दरबारे अकबरी, नौरंगे ख्याल और सुखनदानी फारस बहुत प्रसिद्ध हैं। आवे हयात उर्दू काव्य का पहला इतिहास है। जिसमें रोचक एवं शोधपूर्ण ढंग से कवियों के जीवन चरित्र एकत्र किए गए हैं। सामाजिक पृष्ठभूमि में भाषा के आरंभ और साहित्य की उन्नति का वर्णन किया गया है और बड़ी सफलता से उस वातावरण का नक्शा खींचा गया है जिसमें पुराने कवि अपनी रचनाएं करते थे। कई आलोचकों ने आज़ाद के बहुत से विचारों को गलत ठहराया है, परंतु जैसे जैसे समय बीतता जाता है और प्राचीन पुस्तकें मिलती जाती हैं, आज़ाद की बहुत सी बातें प्रमाणित सिद्ध होती जाती हैं। इसी पुस्तक से उनके एक अच्छे आलोचक होने का भी पता मिलता है। दरबारे अकबरी अकबर बादशाह की एक विचित्र जीवन कथा है जिसमें आज़ाद ने उस सभ्यता की रूपरेखा देने की चेष्टा की है जो हिंदू मुसलमानों के मेलजोल से उत्पन्न हुई थी। नौरंगे ख्याल में पहली बार उस ढंग की एलिगरी लिखने का प्रयत्न किया गया है जो अंग्रेजी में पाई जाती थी। इस पुस्तक में भी आज़ाद की रचना शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। आज़ाद को भाषा विज्ञान में भी बड़ी रुचि थी और उसके मर्मों से भली भांति परिचित थे। उर्दू भाषा में उन्होंने बार बार संस्कृत और फारसी के समान आधार स्रोतों का पता लगाया। इससे पहले खाने आरजू अपनी फारसी पुस्तकों में इस ओर संकेत कर चुके थे। आज़ाद ने ही नए ढंग का पहला नाटक भी लिखा जो अधूरा रह गया। आज़ाद का जीवन उस विद्यार्थी का जीवन है जो सदैव कुछ सीखने और कुछ देने में लगा रहता है। उनका संबंध सर सैयद के चलाए हुए आंदोलन से नहीं था, परंतु वह उसी नवीन विचारधारा के बड़े प्रचारक थे जो नई शिक्षा के कारण जीवन के प्रत्येक प्रांगण में देख पड़ती थी। आज़ाद के बड़े से बड़े विरोधी ने भी उनकी गद्य शैली की प्रशंसा की है क्योंकि उसमें जो रंगीनी, प्रवाह, सुंदरता, जोश और विचारों को प्रकट करने का ढंग मिलता है, वह कहीं और नहीं पाया जाता। अनेक भाषाओं से परिचित होने के कारण वह हिंदी शब्दों का प्रयोग भी बड़े उचित ढंग से करते हैं। आज़ाद की शैली बनावटी नहीं है, बल्कि उनके विचार, चाहे वह जिस प्रकार के हों, उसी शैली में भली भांति प्रकट होते हैं। उनके यहाँ एक प्रकार की पृष्ठ संख्या 196 रंगीनी में डूबी हुई सरलता, ताजगी और सरसता मिलती है। उस समय अंग्रेजी के शब्द प्रयोग करने का बहुत रिवाज हो गया था, परंतु आज़ाद इस बुराई से बचे हुए हैं। शब्द इस प्रकार उनके वंश में हैं जैसे कोई जादूगर अपनी वस्तुओं से काम लेता है। सारांश यह कि आज़ाद उर्दू के महान लेखकों में से हैं और उस नवजागरण का प्रतिनिधित्व करते हैं जो गदर के बाद की उर्दू में पैदा हो गया था। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली 1836 से 1914 ईस्वी का परिचय गत अध्यायों में दिया जा चुका है। वह जिस प्रकार नए युग के एक महान कवि थे, उसी प्रकार गद्य रचना में भी उनका स्थान बहुत ऊंचा है। 50 वर्षों के भीतर उर्दू गद्य कोश में जो पूंजी इकट्ठा हो गई, उसमें हाली का भाग बहुत है। उन्होंने 1867 ईस्वी के लगभग उर्दू गद्य लिखना आरंभ किया। उनकी पहली पुस्तक धार्मिक वाद विवाद से संबंध रखती थी। उसके बाद उन्होंने कुछ और रचनाएं की जो कोई महत्व नहीं रखती। 1874 ईस्वी में मजालिसुन निसा के नाम से नारी शिक्षा के संबंध में एक पुस्तक लिखी जो बहुत पसंद की गई। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में सबसे पहली पुस्तक हयाते सादी है जो 1882 ईस्वी में लिखी गई। इसमें फारसी के सर्वश्रेष्ठ लेखक और कवि सादी के जीवन और रचनाओं पर गहरी दृष्टि डाली गई है। हाली ने जब अपनी नई तरह की कविताओं का संग्रह संकलित किया तो इस पर एक प्रस्तावना लिखना आरंभ किया। वह बढ़ते बढ़ते कई सौ पृष्ठों में फैल गई। यह उर्दू की एक महान आलोचनात्मक रचना के रूप में बारंबार अलग प्रकाशित हो चुकी है जिसको मुकदमे सिरो शायरी कहा जाता है। उर्दू आलोचना शास्त्र में इसको वही स्थान प्राप्त है जो यूरोप में कोलेरिज और वर्ड्सवर्थ के लेखों को प्राप्त है। वैज्ञानिक ढंग से लिखी गई यह पहली पुस्तक है जिसमें उर्दू कविता के गुणों और अवगुणों का विश्लेषण किया गया है। हाल ही सामाजिक और नैतिक सुधार के प्रबल पोषक थे। उन्होंने इसी जोश में उर्दू काव्य के गुणों का उल्लेख बहुत कम किया है और अवगुणों की आलोचना बड़े विस्तार से की है। फिर भी जो कोई उर्दू कविता की विशेषता को समझना चाहता है उसे इस रचना से बड़ी सहायता मिलेगी। हाल ही की तीसरी महत्वपूर्ण पुस्तक यादगारे गालिब है जिसमें उन्होंने गालिब की जीवन कथा के साथ साथ उनकी कविताओं और लेखों का आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। यह भी उर्दू साहित्य की एक महान पुस्तक है। गालिब पर बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी हैं लेकिन यादगारे गालिब का स्थान आज भी बहुत ऊंचा है। उन्होंने सर सैयद का जीवन चरित हयाते जावेद के नाम से सर सैयद की मृत्यु के थोड़े ही समय बाद लिखा। इसके अतिरिक्त उनके निबंधों पत्रों और लेखों के भी कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। हाल ही भी सर सैयद के राजनीतिक विचारों से बहुत कुछ सहमत थे लेकिन सर सैयद के मुकाबले में वह ज़्यादा प्रगतिशील कहे जा सकते हैं। उन्होंने सरल और सीधी भाषा में स्थिति को समझने और उसी के अनुकूल जीवन बिताने का पाठ पढ़ाया। पृष्ठ संख्या 197। उनका विचार था कि पश्चिम से आई हुई सभ्यता में ज्ञान विज्ञान की जो लहरें हैं वह भारत को भी आगे बढ़ा सकती हैं, परंतु उन्होंने कवि सर सैयद की भांति धर्म और आहार व्यवहार को अंग्रेजी सभ्यता के सांचे में ढालने का आदेश नहीं दिया। उनके दिल में भी भारतवासियों और विशेषकर मुसलमानों की गिरी हुई दशा से पीड़ा उठती थी, परंतु वह गंभीरता के साथ उनको पतन के दलदल से बाहर निकालने के लिए उभारते रहते थे। इसी विचार के आधार पर उन्होंने कविता, आलोचना, जीवन चरित्र हर एक में नए पथ ढूंढ निकाले। वह पहले बड़े आलोचक भी हैं और प्रथम श्रेणी के जीवनीकार भी। उनके जीवन में जो सरलता और सहजता थी वही उनकी रचनाओं में भी पाई जाती है। वह जिन बातों को ठीक जानते थे उन्हें विश्वास और सत्यता के साथ बिना किसी के हृदय को चोट पहुंचाए हुए लिख देते थे और यही बात उनके लेखों को जीवन की समस्याओं के निकट लाती है। उनकी भाषा सरल होती थी। उनका विचार था कि उर्दू जानने के लिए हिंदी और प्राकृत का जानना आवश्यक है। कभी-कभी वह अंग्रेजी के शब्द अनुचित ढंग से लिख जाते थे जो अब अच्छे नहीं मालूम होते। इसमें संदेह नहीं कि आलोचना के संबंध में उनका दृष्टिकोण नैतिक सुधार के विचारों से सीमित हो जाने के कारण कहीं-कहीं वास्तविकता से दूर जा पड़ता है, परंतु साधारणतः उनके विचार नपे तुले और यथार्थवादी होते हैं। नए उर्दू साहित्य को भली भांति समझने के लिए हाल ही के गद्य और पद्य दोनों ही का विवेचनात्मक अध्ययन अत्यंत आवश्यक होगा, क्योंकि वह एक ओर तो भविष्य पर दृष्टि जमाए हुए थे और दूसरी ओर अतीत की परंपराओं से पूर्णतः नाता तोड़ना भी न चाहते थे। इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए हाल ही को बदलती हुई सभ्यता का प्रतिनिधि कहना असंगत ना होगा। वह ना तो पुरानी बातों पर आग्रहपूर्वक अड़े रहने के पक्ष में थे और न बिना सोचे समझे नई बातों को ग्रहण करने पर। यद्यपि उनकी रचनात्मक शक्ति बहुत तीव्र नहीं कही जा सकती, परंतु उनकी सर्वथा सहज एवं गंभीर शैली उन्हें नए युग की साहित्यिक विशिष्टता प्रदान करती है।